ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 14 श्लोक संख्या 34 और 35। 34 नंबर में कोई तात्पर्य नहीं है, सॉरी हाँ 34 में कोई तात्पर्य नहीं, 35 श्लोक में है तात्पर्य है। 34 नंबर श्लोक में है, स्वयं आवृत्ति कर लेता हूँ, साथ में 35 नंबर श्लोक आवृत्ति करेंगे। बोल। अच्छा, हरे कृष्ण। क्वचित शीतवात आदि अनेक दैविक भौतिक आत्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे अकल्पः दुरंत विषय विषम्यः अस्ति। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा व अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी कष्ट उठाता है। जब वह उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न हो उठता है, क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। 35 नंबर श्लोक। कोचित मिथ व्यवहारन यत् किंचित् धनम् उपयाति वीतसाठ्येन। क्वचित् मिथ व्यवहारं यत् किंचित् धनम् उपयाति वीतसाठ्येन। शब्दार्थ क्वचित कभी कभी या कहीं भी, मिथ व्यवहारन परस्पर क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर, जत जो भी, किंचित रंच भर, धनम संपत्ति, उपयाति प्राप्त करता है, वीतसाठ्येन किसी की संपत्ति को ठग करके। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र न होकर वा मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कृपया दोहराइए। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, बद्ध जी परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के हैं, शत्रु बन जाते हैं। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कथित है, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहो अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहं ममेति। बानर तुल्य बद्धजी पहले मैथुन में आसक्त होता है और वास्तविक संभोग हो जाने पर वह और अधिक लिप्त हो जाता है, तब उसे कुछ भौतिक सुखों की आवश्यकता होती है, यथा निवास स्थान, भोजन, मित्र, संपत्ति इत्यादि। इन्हें प्राप्त करने के लिए उसे दूसरों को ठगना पड़ता है और उससे घनिष्ठ मित्रों से भी उसका शत्रुता हो जाती है। कभी कभी बद्ध जीव तथा उसके पिता या गुरु के बीच यह शत्रुता ठन जाती है, जब तक कोई विधि विधान में दृढ़ नहीं रहता। भले ही वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदस्य क्यों न हो, वह दुष्टता करता रहता है। फलत हम शिष्यों को विधि नियम के दृढ़ पालन का उपदेश देते हैं, अन्यथा शिष्यों में विरोध होने पर मानवता का उत्थान के लिए किया जाने वाला यह महत्वपूर्ण आंदोलन अवरुद्ध हो जाएगा। अतः जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है, उन्हें इसे स्मरण रखना चाहिए और विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिससे उनके मन विचलित न हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरु श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोचित शीत वात आदि अनेक दैविक भौतिक आत्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे अकल्प दुरंत विषय विसरण आस्ते। क्वचित मिथ व्यवहरन् यत्किंचित धनम् उपयाति वीतसाठ्येन। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा वह अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है। जब उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न हो उठता है, क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंज मात्र लाभ हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। हरे कृष्ण। भौतिक संसार का भोग का एक विकट बन है भवाटवी। इस अध्याय में चर्चा हो रहा है, अध्याय के नाम ही भवाटवी, जिसकी हिंदी अनुवाद है भौतिक संसार भोग का के विकट बन है। ये संसार के जंगल है, जंगल के साथ तुलना की गई, और इस जंगल के अंदर में मनुष्य भटक रहा है। और किसके लिए भटक रहा है? सुख के प्राप्ति की आशा लेकर है। वो दुख नहीं भोगना चाहता। क्या भोगना चाहता है? लेकिन ये संसार का स्वभाव कैसा है? आप सुख भोगने के लिए प्रयास करोगे लेकिन मिलेगा क्या? दुख है, सबका अनुभव है इसका। आप जितनी भी प्रयास कर लो यहां सुखी रहने के लिए, लेकिन सुखी नहीं रहोगे, दुखी रहोगे। ये भगवान ने जो संसार को रचना किए हैं, ये बद्ध जीवों के लिए रचना की गई है। जो लोग ने भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, जो लोग विप्लवी बन गए, सोचे कि कृष्ण अकेला क्यों राधा के साथ नाचेगा, हम भी हमारे पास भी एक एक राधा होना चाहिए, वो भी नृत्य करना चाहते हैं, भगवान को रास में नृत्य करते हुए देखकर इसको भी नाचने की इच्छा। तो भगवान कहते यहां तो नहीं होगा, तो इसके लिए तुम्हारे लिए और, क्योंकि ये भौतिक जगत को सृष्टि कर देता हूं। कृष्ण ते भूलिया जीव भगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे। जो कृष्ण की सेवा भावना को छोड़कर जो भोग इच्छा करता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास न रहकर स्वयं प्रभु बनना चाहता है, तो भगवान कहते ठीक है, और उसके लिए तुम्हारे लिए और एक घर बनाता हूं। तो इसलिए भौतिक ब्रह्मांड की भगवान सृष्टि करके ही बद्ध जीव को ही डाल देते हैं। दुर्गा देवी ने छीन के लिए आती है, देखा कि भगवान खाली इंगित करते हैं, माया ने इनको छीन के लिए आती, कहां से भगवान से आपको अलग कर देती है, भौतिक जगत में लाके डाल देती है, जन्म मृत्यु संसार में। इसलिए भगवान कहते कि ये संसार को जो मैं रचना किया है, इसकी स्वभाव है दुखालयम अश्वासतम, ये दुख की घर है, हैं? ये संसार रूपी वन में जो प्रवेश कर जाता है उसको दुख ही मिलेगा, यहां सुख नहीं मिलने वाला है कितनी भी प्रयास कर ले। दुखालयम और अश्वासत में शाश्वत नहीं रहने वाला है ये भौतिक ब्रह्मांड भी। बार बार ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी के परमायु के साथ संपूर्ण प्रलय हो जाता है, और फिर कई मनोन्तर के अंत में फिर भी आंशिक प्रलय होता है, एक युग समाप्त होकर दूसरे युग आने के पहले फिर भी एक प्रलय आंशिक प्रलय होता है। कई प्रकार के भूत्वा प्रलियते हैं, केवल भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय नहीं होता, हमारे शरीर का भी क्या शरीर का भी प्रलय हो जाता है। हनुमान जी, इनके नाम है हनुमान, पहले आप लोग जानते होंगे किस रूप में, राकेश प्रभु, लेकिन अभी उनके दीक्षित नाम है हनुमान, हनुमान जैसे पहाड़ को उठा है, कौन सा गंधवर्धन पहाड़ को उठा के लाया ना लक्ष्मण को जीवित करने के लिए। ये जो सोए हुए ने जो मूर्छित होकर जीवात्माएं पड़े हुए संसार में, इनको जगाने के लिए इन्होंने किताब को बांटते हैं, हैं? किताब को पहुंचाते सब पैसा। इसलिए इनके नाम रखा गया हनुमान, किताब वितरण में ही हनुमान के समान है, पुस्तक बांटते हैं। एक एक ही व्यक्ति वो पूरे एक महीने में, दिसंबर महीने में अकेले ही 70,000, 75,000, 80,000 तक बांट देते किताब। हमारे पूरे मंदिर मिलकर भी 40,000, 35,000 किताब बांटते हैं, हैं? पूरे मंदिर में सारे भक्त मिलकर। तो इसलिए है, लेकिन ये भौतिक जगत में कोई भी कितनी प्रयास करें वो सदा दुखी रहेगा, दुखालयम। अरे शाश्वत नहीं है ये शरीर, ही हमारा शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। लेकिन फिर भी ये शरीर को हम सजाना चाहते हैं, हैं? कितनी बार शीशा में देखते मुख, दिन में 10 बार कहीं जाते तो अरे ठीक है कि नहीं मुखा है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, कभी भी आईना में अपने मुख नहीं देखते थे, हैं? भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कभी अपने वही नहीं देखने में बहुत, आप देख रहे हैं कितने तेजस्वी हैं, कितने सुंदर, लेकिन इनके देखने में हैं, हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पूरे जिंदगी में कभी अपने मुख दर्पण में नहीं देखे हैं। वो तिलक ऐसे ही करते थे, स्वयं कर ले तिलक है, हैं? लेकिन हमारा आदत है ना देखना, मुख देखना कितने सुंदर हूँ कि क्या है, हैं? हैं? तो लेकिन ये संसार के ऐसे स्वभाव है। भगवान कहते कि अनित्यम असुख लोकम, हैं? ये संसार अनित्य है, यहाँ पर क्यों कोई चीज नित्य नहीं है, ये अनित्य है और यहाँ पर सुख नहीं मिला। अनित्य असुख लोक, ये असुख लोक, सुख लोक नहीं है, असुख लोक। भगवान कहते कि यदि किसी ना किसी कारण से तुम इस संसार में गिर गए हो, तुम्हारे कर्तव्य है अनित्यम असुखंग लोकंग इमंग प्राप्य, यदि किसी ना किसी का कारण से संसार को प्राप्त कर लिया, इमंग प्राप्य भजस्व माम, तुम्हारे कल्याण होगा जब भी तुम मेरी भजन करोगे, जब भी मेरी भक्ति करोगे, जब भी मेरी मेरी सेवा में तुम जोड़ जाओगे तो अभी तुम्हारे कल्याण होगा। हैं? ये संसार में कोई सुखी नहीं है, लेकिन भगवान की भक्त अवश्य सुखी है। हैं? जो भगवान की भक्ति करते, शुद्ध भक्ति करते हैं, जो प्रेम भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं, सदा सुखी रहते हैं। कोई भक्त कभी असुखी, अंधे को भी असुखी नहीं रहता है। लेकिन हम अभी तक भक्ति करने पर भी हमको अभी तक थोड़ा थोड़ा दुख भी मिलता है, हैं? दुख मिलता है कि नहीं? जैसे यहाँ 34 नंबर श्लोक में कहते हैं कि बद्ध जीव को 3 प्रकार के क्लेश भोगना पड़ता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक क्लेश। आधि भौतिक क्लेश जो कहते हैं, जो दूसरे प्राणियों के माध्यम से हमको कष्ट प्राप्त होता है, हैं? दूसरे जीव हम कष्ट देते हैं, हटा चलते रहे कहीं बिच्छू आगे काट दिया क्या हो गया, हैं? कहीं मच्छर काट दिया क्या हो गया, मलेरिया हो गया, हैं? दूसरे जीव कष्ट देते ना, कोई जा रहे किसके कारण कोई धक्का लगा दिया आपको, थप्पड़ लगा दिया, कई प्रकार के कष्ट ऐसे होते हैं। अन्य जीवों के माध्यम से हमको कष्ट मिलता है, हमारे स्वयं का मन और इंद्रिया हमको दुखी बनाते हैं, हम कई प्लान बनाते हैं सुखी बनने के लिए, जो सुखी नहीं बन पाते तो फिर मन में दुखी होते हैं। मन जब दुखी होता तो हम पूरे इसका प्रतिक्रिया पूरे शरीर को प्राप्त होता है, हैं? इंद्रिया मनों की मन और इंद्रिया के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमको दुख मिलता है। और आधि दैविक क्लेश किससे मिलता है? सुपर नेचुरल पावर जो कि जो देवताओं के द्वारा है, जिनका हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं, इनको कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं है, हटात क्या आ गया, आंधी आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, कई प्रकार की झड़प जाता बात्या, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, ये सब देव ये आधि दैविक क्लेश हमको भोगना पड़ता है। ये संसार में प्रत्येक जीव को 3 प्रकार के क्लेश भोगना पड़ता है, हैं? इसलिए जब उनका सामना लेकिन ऐसे कष्ट होने पे जब संसार रूपी जंगल में भटकते हुए मनुष्य दुखी बन जाता है, ये प्लान बनाया था सुखी बनने के लिए लेकिन सुखी नहीं बन पाता है, दुखी होता है, 3 प्रकार के क्लेश इसको सताते हैं, हैं? और विशेष रूप में भौतिक जगत में व्यक्तियों की जो विशेष आकर्षण है धन और स्त्री, हाँ, भौतिक सुख, इंद्रिय सुख का जो मुख्य आशय है धन और स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, है ये दोनों ही। तो इसलिए भौतिक जगत के जो पहले धन होने से, तो फिर जाए मैथुन जीवन तभी शुरू होगा जब क्या आएगा, पैसा आएगा। कोई लड़का के पास पैसा नहीं तो बेचारा बैरागी है, तो उसके पास कोई लड़की भी नहीं आएगा। जिसके पास धन होता है उसके पास फिर लड़की उसको देखता है, कितने बैलेंस रखा है, क्या है, यानी कभी कभी धन रखने पर भी नहीं होता है। लेकिन इसलिए 35 नंबर श्लोक में विशेष रूप में धन की चर्चा की गई, धन के ये भौतिक संसार के जो भोग वस्तु में आप भोग करना चाहता है संसार को, तब तो उसको धन का जरूरी है। उसके लिए तो धन, मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन, धन मधु ने मधु से भी अधिक मधुर होता है, सूर्य की रश्मि से भी अधिक उजाला दिखाई पड़ता है। धन के लिए ही दुनिया में कई प्रकार की झगड़ा चलता है, धन के लिए। धन कोई प्रभुपाद जी कहे कि दोनों चीज में हम किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं, धन और स्त्री, ये दो मामला में आप किसी को विश्वास नहीं करना, क्योंकि माया का ये अस्त्र है। ये दो अस्त्र माध्यम से माया सभी को कबलित कर लेती है, अपने अपने कबल में रख लेती है। आप कितनी भी अच्छे मित्र हो, लेकिन फिर भी ये दोनों माँ प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिए हैं। जो भी यहीं पर वृंदावन में प्रभुपाद हाउस में रहते थे, प्रभुपाद जी ने अपने ट्रेजरी है, आज भी देखोगे प्रभुपाद का ट्रेजरी उसके प्रभुपाद हाउस में है। देखा कितना लोग प्रभुपाद का ट्रेजरी देखा, और प्रभुपाद हाउस में इतनी बार जाते हैं प्रभुपाद का ट्रेजरी नहीं देख पाया है। तो प्रभुपाद का ट्रेजरी है, प्रभुपाद जी जो रोज कोई आता था दान देता था, दर्शन करके डोनेशन देता था, प्रभुपाद जी ने ट्रेजरी में रख के अलग कर देते हैं। वही पैसा का जो रूम डोनेशन का पैसा में ही है, इन्होंने ट्रस्ट बनाया MBT मायापुर वृंदावन ट्रस्ट, ये जो आप देख रहे MBT है, हाँ ये मायापुर वृंदावन ट्रस्ट, वृंदावन और मायापुर को सेफ रखने के लिए भविष्य में, तो उसके लिए कुछ इमरजेंसी फंड प्रभुपाद रखा करते थे तो। लेकिन वो ट्रेजरी का चाबी प्रभुपाद जी किसी को नहीं देते थे, अपने सेक्रेटरी तक भी नहीं, सेक्रेटरी के सर्वेंट को ही नहीं, चाबी सबसे में अपने पास रखते थे। तमाल कृष्ण महाराज सेक्रेटरी थे, भक्तियारू महाराज सर्वेंट थे। प्रभुपाद जी ने एक प्रत्येक दिन बाथरूम में स्नान करने जाएंगे तभी भी वो ट्रेजरी के चाबी लेके अंदर में जाएंगे बाथरूम के अंदर, लेकिन एक दिन चाबी लेना भूल गए स्नान करने के टाइम चाबी। लेकिन आधा स्नान किए हुए भीगा टॉवल पहन के वो बाहर आए और चाबी लेके फिर बेड से लेके गए, फिर कोई था नहीं। तमाल कृष्ण महाराज बैठे भक्तियारू महाराज, तो बाद में प्रभुपाद जो स्नान करके आए, कपड़ा चेंज किए, तिलक कर रहे हैं, तिलक कर लिए, तो तमाल कृष्ण महाराज ने पूछे कि प्रभुपाद हम आपके लिए पूरा लाइफ सेक्रीफाइस किए हैं और आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आप ट्रेजरी के चाबी जदि भूल गए थे यहाँ बेड में पड़ा था, लेकिन आप आधा स्नान से निकाल के आए, इधर कोई बाहर का नहीं था, हम दोनों ही बैठे थे मैं और भक्तचारू तमाल कृष्ण महाराज बोले, फिर आप आके फिर नहीं। तो प्रभुपाद जी कहे कि मैं एक आचार्य हूं तो तुमको आचरण करके सिखाता हूं, तुमको भी ऐसा ही किसी में विश्वास नहीं करना, किसमें धन की मामला में तो किसी की, तुम भी भविष्य में आचार्य बनोगे गुरु बनोगे, लेकिन धन के मामला में किसी को विश्वास नहीं करना है। ये धन के मामला में जैसे प्रभुपाद तात्पर्य लगते कि यहां तक झगड़ा हो जाती है गुरु के साथ व अपने पिताजी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो सकता है, किसके लिए, धन के लिए है। गुरु शिष्य में भी झगड़ा हो सकता है, पैसा पैसा के मामला में बहुत ये माया का एक अस्त्र है धन है, इसलिए इसमें किसी को विश्वास नहीं करना, यदि विश्वास किया तो आप परेशान हो गए हैं। अरे धन का पो क्या, इसके पास में सेमंतक मणि था, किसके पास में, शक्राजीत के पास है। भगवान जब चले गए कहाँ, भगवान ने बोचा बताया था शक्राजीत को कि ये तुम सेमंतक मणि दे दो, हम राजकोष में रख देंगे, ये होगा तो कोई झगड़ा भविष्य में हो सकता है धन के मामले, तो मानना नहीं, नहीं नहीं मैं रखूंगा, मेरा धन क्यों दे दूं, सोचा ही कृष्ण है उसको ले हड़प लेना चाहते, भगवान की बात सुना नहीं, अपने पास रखा। अब भगवान तो वहाँ हस्तिनापुर में है, पांडवों की और कौरवों की झगड़ा चल, तो इसलिए वहाँ आए थे थोड़ा अपने कुंती की अपने बुआ को देखने के लिए आए थे, कृष्ण बलराम दोनों आ गए साथ में। तो इसके बीच में शक्राजीत के पास में जो सेमंतक मणि था इसको उसे छीन लेने के लिए तीन लोग प्लान बना लिया है, कौन कौन, शतधन्वा, कृतवर्मा और अक्रूर जी जैसे महान भक्त हैं, वो एक नवदा भक्ति का एक अंग में आचार्य है, कौन सा अंग में है, बंदनम में। तीनों प्लान बनाया, इसका कैसे छीनेंगे, इसका ये ले लेंगे कौन सा सेमंतक मणि, क्योंकि इसका क्या विशेषता था, आठ मोहन सोना एक रात में देता था, रख दे बस, तो दूसरे दिन सुबह आठ मोहन गोल्ड मिलता था है? तो इसलिए तीनों मिलकर छीन ली। देख भगवान की बात नहीं सुनने से बा कोई आचार्य की बात नहीं सुनने से क्या दुर्गति होता है, धन की लोभ सबके पास होता है, अक्रूज भी देखो उसे फंस गए। ये तीनों मिलके प्लान बनाया और सतधुना को भेजा, जाओ लुट के आओ। सतधुना देखा कि ये शक्राजित का इसको पकड़ के रखा है, इसको देने के अपने जान जाने के बाद ले सकता, कोई ऐसा नहीं देने वाला, इसलिए जान से मारा इसको है? ये धन के लिए कभी कभी जान भी जाता है, इसलिए धन की मामला बड़े सतर्क रहना चाहिए। सनातन गोस्वामी आ रहे थे वृंदावन, उनके साथ में एक नौकर था, उसका नाम था ईशान। तो सनातन गोस्वामी जेल से निकाल कर आए और इनके नौकर उनका पीछे पीछे आया, साथ में आया, आके देखे कि बिहार और बंगाल के बॉर्डर में है वो, एक हिल एरिया पहाड़ का एरिया है, तो वहाँ पहाड़ को क्रॉस करके आना पड़ेगा, जंगल को क्रॉस करके। तो रात में देखे कि रात हो रहा, तो वहाँ रुकने के लिए निश्चित किया, लेकिन वहाँ होटल देखा जंगल के अंदर में, एक छोटा क्या ढाबा बा होटल जैसा है। इनको भूख भी लग रहा था, बहुत दिन भर कुछ खाए नहीं थे, भाग रहे थे सीधे, ये मुसलमान का जो हुसैन शाह का कोई गुप्तचरा के फिर पकड़ लेगा है। तभी वहाँ आके जब पहुँचे, होटल वाला देखा कि दोनों आ रहे हैं, बड़ा आदर किया इनको, अच्छा खिलाया पिलाया, बैठा है, सोने के लिए अच्छा कमरा दिया रोने हैं। तो सनातन गोस्वामी बड़े राजमंत्री थे, बोले कि बिना पहचान के व्यक्ति है, हाँ कोई पहचान भी नहीं कुछ नहीं है, ये हमको इतनी आदर क्यों कर रहा है, हैं ये तो लगता नहीं कोई संत व्यक्ति है, कोई महात्मा हो आदर करेगा, आप पति पति को खिलाएगा, इतनी आदर क्यों कर रहा है। अपने नौकर को पूछे, तुम्हारे पास में कुछ है कि माल पानी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, वो धन है, तो बोला हाँ मेरे पास में सात सोने की मोहर है, हैं था आठ लेकिन बोला सात। देखो उनकी मैंने एकदम नौकर है, मैंने प्रभु और नौकर है, तो भरे को है सात। सनातन गोस्वामी कहेंगे तू एक कार को क्यों लेकर चला साथ में, लाओ ऐसा सात सोने बोन मुझे लाओ, सात सोने के मोहर दे दिया ईशान। सनातन गोस्वामी स्वयं लेके गए और वो डकैत का सरदार जो था, वही तो डकैत सरदार है लेकिन होटल खुल के बैठा था, इसके तांत्रिक ज्योतिष रखा था साथ में, वो बता देता था ये जो लोग आ रहे हैं उनके पास में धन है, जिसके पास धन नहीं आता उसको नहीं पूछता था, वो आपने जाने दो हैं, लेकिन जिसके पास धन रहता था बताता था तांत्रिक, तो उसको बोला खिलाता था, बहुत आदर करता था, खिलाता था पिलाता था, सोता सुलाता था, रात में सब लूट लेता था, जरूरत पड़ने से वो काट के फेंक देता था जंगल में, सारे धन ले लेता था। तो सनातन गोस्वामी जाके उसको बोले कि देखो भाई, आप हमारे बहुत सेवा किए, इतनी अच्छे सेवा किए हो, हम बड़े भूखे थे, दिन भर क्लांत थे, तुमने हमको खिलाया पिलाया, आराम के लिए बिस्तर भी दिया, तो इसलिए हम तुमको हमारे पास में जो धन छोटा सा था दे रहा हूँ, क्योंकि सात सोने की मोहर दे दिए। तो बड़ा आश्चर्य हो गया, बोला अरे ऐसे तो व्यवहार समझ गया, ये बड़ा संत आदमी है। तो बोला कि मैं समझ गया आप महान हो, संत हो, हैं आपके व्यवहार से पता लगता, और आप लेकिन मेरे ज्योतिष ने बताया था आपके पास सात नहीं आठ है और एक स्वर्ण मुद्रा है, हैं। तो सनातन गोस्वामी ने इसलिए पूछे, वो जो उनके नौकर था ईशान, ईशान तुम्हारे पास में और भी धन और भी एक मोहर है ना क्या, फिर बोला कि हाँ हाँ और एक सोने के मोहर, बोले तुम एक सोने के मोहर लेके वापस जाओ, कहाँ घर चले जाओ, तू वृंदावन जाने की योग्य नहीं हो, हैं वृंदावन में तो निष्किंचन व्यक्ति रहता, तुम ये धन को रखा, ये काल को रखा, लेके जाओ वापस जाओ, इसको लेके बंगाल वापस चले जाओ तुम। वो कितने भी बोला, बोले नहीं तुम वृंदावन नहीं बास कर सकते, तुमको अभी तक धन में क्या लालच है, वापस लेके जाओ, हैं। कितना बोला कि इस सनातन को से माने नहीं, उसको निकाल दें, क्योंकि डकैत सरदार ने बोला सनातन प्रकृति मेरे प्लान था आज रात को तुमको मर्डर करके तुम्हारे साथ धन लेने के लिए, क्योंकि मेरे मन, लेकिन आप लोग पहले से मुझे दे दिया, मैं बड़े प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं समझ गया आप महान संत हो, हैं आपको मैं जो भी चाहोगे मेरे से सेवा, कहे तुम्हारा पैसा तुम वापस ले लो, मैं तुम्हारे पैसा नहीं लूंगा। सनातन गोस्वामी कहे कि नहीं, आज तुमने आपको यदि ये धन को नहीं लोगे फिर आगे कोई फिर मेरे धन को मेरे से छीन लेगा, वहां मेरे मॉडल करेगा फिर धन के लिए, इसलिए आपके पास में ही धन रहे। इसे कह के धन वो सात स्वर्ण मुद्रा रखा, लेकिन सनातन गोस्वामी को फिर रात्रि में जंगल को, जंगल से लोग भेज के जंगल को पार कर दिया, बहु हिंस जंतु रहते हैं, अच्छे राजमार्ग में लाकर छोड़ दिया। तो इसलिए धन है अर्थ ही सभी अनर्थ का मूल है, क्या कहते हैं, अर्थ ही सारे अनर्थ का मूल है, हैं? जिसके पास में धन रहता है उसी के पास में सारे चिंता भी रहता है, टेंशन है, हैं? पैसा है तो कितने टेंशन रहता है उसको संभाल के रखने के लिए, हैं? कोई चोर लूट लेगा, कोई लगा नहीं तो ये क्या जीएसटी लगाता है, कितना टैक्स लगा देता, कौन मोदी गवर्नमेंट टैक्स भी लगा देता है पता चलता तो है, हैं? हमारा एक मित्र दिल्ली में रहते थे तो क्या क्या था, कहला कि पैसा के वैसा ही तो टैक्स, तो इसलिए गोल्ड खरीद खर के गोल्ड खरीदे के गोल्ड को फिर ईट बनाकर मैंने ऐसे तो उसको जमीन के थोड़ा गाढ़ा करके उसके अंदर सेव करके रखा था। अरे उसका कोई मित्र था वो कैसे भी इसको पता लगा लिया है। आ एक दिन थोड़ा सा चाबी मंगला, हमारा गेस्ट है थोड़ा रेस्ट करेगा, हैं आया कोई तो उन्होंने किया उसका चाबी खाली ले लिया, चाबी लेकर उसका डुप्लीकेट चाबी मार्केट से बना के ले आया, उसको बोला कि नहीं मेरा गेस्ट आया नहीं तुम्हारी चाबी वापस कर। बाद में ये कहीं बाहर चला गया घूमने के लिए पंद्रह दिन पंद्रह बीस दिन बाहर चला गया, पता लगा ये बताओ पंद्रह बीस दिन आने वाला नहीं, और डुप्लीकेट चाबी बोला नहीं तो खोल लिया, खोल के जितना सोना रखा था सब निकाल के ले गया, हैं डेढ़ दो करोड़ का बिचार रखा था सब निकल। तो इसी प्रकार ये संसार में धन की मामला में किसी को विश्वास नहीं करना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धन की मामला में तो किसी से भी झगड़ा हो सकता है, हैं? लड़की और पिताजी का झगड़ा हो जाए, सास गया ससुराल में, हैं? और उसको ज्योतिक मार ससुर तंग करेगा आके फिर कहेगा मैं दो प्रॉपर्टी में मुझे भी दो, आजकल लॉ हो गया प्रॉपर्टी में लड़की को भी भाग है उसको दो मेरा भाग दो प्रॉपर्टी, हैं? कई प्रकार के झगड़ा है, धन के मामला में किसी को विश्वास नहीं करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य में कि प्रकृति में धन के मामला में कोई किसी से भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन धन किसी भी व्यक्ति चाहता है, धन चाहता किसके लिए, मैथुन आगार जीवन को उपभोग करने के लिए है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले तात्पर्य पहले कोट करते पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में तत् तयो मिथर हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त बीतई जनस्य मोहो अयं अहं ममेति। ये ऋषभदेव के भगवान ऋषभदेव के शिक्षा में से श्लोक ली गई है कि जो ये संसार में प्रकृति में किस लिए स्त्री पुरुष एकत्रित होते हैं, परस्पर में आकर्षण किस लिए होता है, संभोग की सुख है, मैथुन सुख के कारण है। जैसे गीता में कहा जाता है कि ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहा श्रुति विभ्रम श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। दूसरे अध्याय गीता में वह ने कहा तो ये संसार में परस्पर में पहले एक लड़का और लड़की परस्पर को देखते हैं, देखने से क्या होता है, क्योंकि अंदर में काम वासनाएं भरा हुआ है तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं लस्टी डिजायर के कारण, हैं? फिर उनके आस्ते आस्ते लव लेटर लिखना शुरू होता है, वो लव नहीं होता क्या होता है, काम होता है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम उसको कहते हैं भगवान को प्रेम करना, प्रेम संसार में किसी के साथ नहीं होता है, हैं? संसार में कोई स्त्री लड़का लड़की परस्पर में देख के राय जब ये दूसरे को आकर्षित हो ये प्रेम थोड़ी कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, इसको कहते काम लस्टी डिजायर, हैं? लस्टी डिजायर के कारण एक दूसरे में आकर्षित होते हैं, फिर ये उसके पास पत्र लिखता है तुम्हारे मुख तो चंद्रमुख है तुम तो चंद्रमुख में एक समान, अरे तुम्हारे मुख तो पूर्णिमा चंद्रमा को भी मात देने वाले हैं, हैं? चंद्रमा भी कलंक है तुम्हारे मुख में तो कुछ भी है, पूरे इतनी सुंदर हो, फिर लेटर लिखेगा चंद्रमुखी है चंद्रमुख, फिर आस्ते आस्ते रिलेशन हो जाते हैं, ध्यायते विषय संग बार बार परस्पर में देखने मिलने लेटर के आदान प्रदान करने से फिर आस्ते आस्ते आसक्ति बढ़ता है। संगात संजायते काम, संग करने से इंटरेस्ट डिजायर बढ़ती जाता है। तो काम फिर चरितार्थ करने के लिए चाहे दोनों का शादी भी हो गया, मिल भी गए, कैसे भी हो, तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी। बस कोई गुरुजन पर कोई बोलना पड़ने में नहीं सुनने, बस लेके भागे, गुरु भी बोलने से नहीं सुनेगा। इस मामला में गुरु को यदि गुरु की बात में नहीं सुनने वाले हैं, हमें देखा है कि भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर मंदिर से हमारा इस्कन भुवनेश्वर से एक भक्त था, है आके यहाँ रहता था, अखंड कीर्तन में जैन किया था 24 आवर कीर्तन में, उस समय यहाँ जैन करके उसको उसके गुरु महाराज मना करते थे, गुरु गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य तो मना करते थे, नहीं तुम वृंदावन वास करने के अधिकार नहीं हो, अब यहाँ रहो भुवनेश्वर में रहो, ये भी वृंदावन है। बोला नहीं नहीं मेरे मन तो बड़ा वृंदावन वास करने की हो रहा है, मैं थोड़ा नाम भोजन करूंगा वृंदावन। तो पर नमान के आया, इंद्र प्रभु के साथ रहा, कीर्तन करते रहा। फिर बोला कि ठीक है मुझे थोड़ा कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा करना है। ब्रजमंडल परिक्रमा में गया, परिक्रमा जाके वहाँ कोई विदेशी लड़की था, इतनी इटालियन लड़की के साथ में कहीं रहा है, हो गया मका मुलाकात। तो फिर दोनों डिसाइड कर लिया शादी करने के लिए। फिर वो लड़की को लेके गया कहाँ, भुवनेश्वर आया था, इधर भजन कर नाम भजन करने के लिए। तो लड़की जब गया तो महाराज को डांटे, गुरु है मैं तो बोला था तुमको वृंदावन वास करने योग्य नहीं है, तो इसको कहाँ ले, नहीं इसको मैं शादी करना चाहता, हमें दोनों का सब कुछ बात हो गया सब कुछ। बोले तू नाम भजन करने गया था वृंदावन, ये क्या हुआ। बोला नहीं नहीं हमारा सब बातचीत हो गया, इसको शादी करना ही है। तो महाराज बोला ठीक है तो शादी करना है गृहस्थ, मैं तुमको अच्छे कुलीन घर की लड़का है लड़की डिसाइड करके दूंगा, है ये नहीं इसके साथ ये है ऐसे नहीं, तुम व्हाइट एलिफेंट को संभाल नहीं पाओगे, है तुमको फिर भाग जाएगी तुमसे, फिर रोते रहोगे, तब तुमको मैं अच्छे कुलीन घर की लड़की शादी कराऊंगा। सुना नहीं, 7 दिन तक महाराज समझाए समझाए सुना नहीं है। तो फिर लास्ट में महाराज देखिए सुनने वाला नहीं है, ये लस्टी डिजायर के महाराज गुरु का बात में नहीं सुनता है शिष्य, तो इसलिए बोले कि दोस्त बार अपने शिष्य प्रभुचर में बोले बोले इसको पकड़ो, पूरा सेविंग कर दो, सिखा फिखा सब काट के जब मड़ा ऐसे ले लो, भागा दो उसको, बस भागा दी, पूरा सेविंग कर दो सिखा फिखा काट के, बस बोले ये मेरा शिष्य नहीं, शासन में नहीं रहता तो शिष्य नहीं है, हैं अश्रद्धालुओं को शिष्य नहीं पाया, नवम अपराध है, नाम अपराध क्या है, अश्रद्धालुओं को हरिनाम की महिमा का प्रचार करना, इस अपराध को जब एक्सप्लेन करते हैं हरिनाम चिंतामणि में, कहते कि इसमें ये भी क्वालिटी है, ये अपराध होता है, अयोग्य शिष्य को शिष्य बनाना है, जो प्रकृति में शासन रहने के लिए तैयार नहीं है ऐसे व्यक्ति को शिष्य बनाना, इसी कैटेगरी के आते हैं अयोग्य व्यक्ति को शिष्य बनाना है। जब अयोग्य व्यक्ति को शिष्य बना लिया किसी कारण से, फिर जब देखता कि ये योग्यता नहीं है, तो उसको तुरंत गुरु का कर्तव्य है कि उसको त्यागना है, तो उसको सेविंग कर छोड़ दी बस। और देखा कि सेविंग हो गया, सब हो गया, और लड़की भी जो था वो भी भाग गया। बोले नहीं मैं तो तुमको इसलिए शादी करना चाहता, तो इस्कन के भक्त अभी तो इस्कन से तुझे निकाल दिए, मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये है भौतिक जगत, तो इसलिए हमें जानना है। पर तो भी पहले देखना जरा, चंद्रमुख चंद्रमुखी पर कहे कि शादी भी हो जाता, बाई चांस गुरु भी नहीं बाधा दिया, कैसे भी शादी हो गया जनक अन्य प्रकार ने है। पर पहले तो चंद्रमुख चंद्रमुखी थे, 1 साल के बाद फिर क्या होगा है। तो पहले जो हंसी हंसी दिख रहा था बड़ा आनंद होता था, पर आस्ते आस्ते सूर्यमुखी होता है, चंद्रमुख से फिर सूर्यमुख बनता है, सूर्यमुखी है। और फिर 2-3 बच्चा हो गया है, फिर कहीं जाना है तो वो बच्चा को पकड़, मैंने वो जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड आजकल युग में कैसे होते हैं, हस्बैंड का अर्थ हंसता हुआ बैंड है, चलता रहेगा। अरे बच्चे पकड़ेगा, यहाँ से सारे लगेज भी पकड़ेगा, मैं देखा स्टेशन में कहीं एयरपोर्ट सो चलते रहेगा, और जो पत्नी होगी वो केवल वैनिट बैग लेकर चलते रहेगा, आप उसको डांटते रहेगा उल्टे पड़े एक, तो आस्ते आस्ते फिर वो ज्वालामुखी बनेगी है, चंद्रमुखी से फिर क्या सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी। तो ये भौतिक संसार ऐसा ही है, जो मूर्ख है उसमें फंस जाता है, जो फंस जाता है उसमें जंगल के अंदर निकाल नहीं पाता है, फंस तो गया था जंगल में, फिर आस्ते आस्ते दावा नल इसमें लग जाता है अपने जल्द, तो दावा नल इसलिए संसार दावा नल दृढ़ लोक त्राणाय कारुण्य धना धनत्वम। तब रोएगा, रोते रहेगा, बचाओ मुझे बचाओ, संसार फंस गया इसके अंदर से। अब बचाने वाला कौन है? सदगुरु। तभी फिर गुरु वैष्णव कृपालु होते, दयालु होते हैं, फिर कृपा करके फिर इसको उद्धार के उपाय बताते हैं कैसे संसार से उतार हो गए। हाँ, संसार अदावा नल लीढ़ लोको त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य बंदी गुरु श्री चरणारविंद। ये भव रूप भव सागर रूपी बा, ये भव जो भवता भी बा, ये भौतिक संसार रूपी जो भोग का एक विकट बन है, इससे मुक्त होने के लिए फिर हमको कौन सहायता करता है? सदगुरु। हाँ, गुरु वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, पर दुखे दुखी होते हैं, इसलिए फिर वो इसी दावानल को बुझाने में है? संसार दावानल जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश भोग रहा है प्राणी, उसे उद्धार करने के उपाय बताते हैं। है? क्या बताते हैं? इस कलि युग में कोई दूसरे उपाय नहीं है। किसी ना किसी कारण से यदि तुम इस संसार के अंदर घुस गए हो, फंस गए इस संसार के जंगल में, तो दावानल भी लग गया, तब फिर तुम जपा करो। क्या जपा करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केंदे बोले ओहे कृष्णा आमी तब दास, तुम्हारे भूलिया हमारो हईल सर्वनाश। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तब जीव जब तक रोएगा नहीं उसको कहां से गुरु मिलेंगे? कृष्ण कृपा करेंगे तभी वो रोना शुरू करेगा, तभी गुरु फिर उनके भगवान अपने प्रतिनिधि सदगुरु को उसके पास भेजते हैं। केंदे बोले रोए रो रो कर बोलेगा, हे प्रभु मैं कहां फंस गया है? केंदे बोले हे कृष्ण आमी तब दास, मैं आपके दास हूं है? और आपको भूल जाने के कारण मेरी सर्वनाश हुआ। मैं तीन प्रकार के क्लेश में है, ए दुख में दुख में भोग रहा हूं, हे प्रभु मुझे इसे उद्धार कीजिए। जो जीव जब इस प्रकार संसार में रो रो कर पुकारता है कृष्ण को, तो कृष्ण फिर अपने प्रतिनिधि को भेजते। किसको? सदगुरु को भेजते। तो सदगुरु आकर आपको सिखाता है भक्ति योग की विधि। हैं, प्रभुपाद जी कहते कि ये जो संस्था में बनाया, ये बड़े महत्वपूर्ण संस्था है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यही एकमात्र भविष्य यही संस्था है जो कि संपूर्ण जो मानवता को ये संसार रूपी भवसागर से उद्धार कर सकता है। भाई भवाट अभी से संसार रूपी भौतिक भोग बन से मुक्त कर सकता है। इसलिए जो ये संस्था, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के सदस्य है, इनके बहुत बड़ा जमींदारी है, इनको सहजिया नहीं बनना चाहिए। कई हरे कृष्ण मंत्र तक जपा करते हैं, लेकिन जपा करने के साथ साथ भी लोग क्या करते हैं? सहजिया वृत्ति भी करते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 प्रकार के सहजियाओं के नाम दिया है, आउलो बाउलो करता भजा सखी बेकी गौरांग नागरी, कई चूड़ाधारी, कई प्रकार के सहजिया है। ये सारे हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, लेकिन रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, बीड़ी भी फूकते हैं, बीड़ी भी फूकेंगे, नशा गंजा भी पिएंगे, और मछली भी खाएंगे। बंगाल में बहुत लोग छोड़ देंगे, मांग से छोड़ देते हैं, लेकिन मछली नहीं छोड़ेंगे। मछली कहेंगे गोसाई एटा जलेर फल, जलेर फल। तो एक बार मुझे सेविंग कर रहा था कि नहीं, मायापुर में सेविंग हो रहा था, मैं देखा कि वो भी कंठी लगाया, तिलक लगाया। मैं बोला आप तो बड़ा वैष्णव हो। बोले हाँ हाँ हम वैष्णव है, हमारा सब भी वैष्णव है। मैंने आप मछली खाते हो? कहा गोसाई एटा तो जले का जलेर फल है, मछली खाना नहीं छोड़ेंगे और सब छोड़े। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि हमारे इस्कन के भक्तों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन गुरु से, लेकिन रेगुलेटरी प्रिंसिपल को यदि फॉलो नहीं करेगा, अब उसके सारे आध्यात्मिक जीवन समाप्त हैं, नष्ट भ्रष्ट होते हैं, सहजिया नहीं बनना है। इसको रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ठीक से फॉलो करना चाहिए। क्या रेगुलेटरी प्रिंसिपल आपको पता है? गुरु जब दीक्षा देता है पहले आपको पूछता है, इसलिए इस्कन में दीक्षा देने के पहले सदगुरु पूछेगा चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है बताओ। हरे कृष्ण मंत्र जपने के साथ साथ ये रूल को फॉलो करना, नशा नहीं करना, जुआ सटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री संग से बचकी रहना। इसके साथ साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवैध स्त्री, ये चारों रूल से सबसे बड़ा कठिन है कौन सा? अवैध स्त्री संग। ये चाहे दैहिक रूप में आप त्याग देते हो लेकिन मानसिक रूप से चिंतन रहता है, आकर्षण होता है। कोई रास्ते में जाते कोई सुंदरी लड़की है तो आंख अपने डल जाता है उसके ऊपर, सिखाना नहीं पड़ता। कई जन्म जन्मांतर से करके आए हैं, ये अभ्यास है, तो इसलिए ये भी अंतकरण में काम वासनाएं जब छुप की रहता है सुप्त अवस्था में, ये भी जब तब संपूर्ण नहीं जाएगा तो फिर ये हमारा ये इसी कारण से ही तो भक्ति सिन्हा सरस्वती ठाकुर ने सारे नवद्वीप के बाबा जी को चैलेंज किए थे। क्या चैलेंज किए थे? जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नित्यालय में प्रवेश किए उनके शरीर को सभी लोग दावा करते थे, हम बाबा जी हैं, हम लेके हमारा आश्रम में इनको समाधि देंगे। मैं सब जानते थे सिद्ध बाबा है, पूरे इनकी प्रसिद्धि है, पूरा ब्रज में नवद्वीप में सभी जानते हैं, और जहां पर इनकी समाधि रहेगा बहुत लोग आएंगे उनको समाधि दर्शन करने के लिए, तो दक्षिणा भी हमको मिलेगा, डोनेशन डाल देंगे उनकी समाधि के सामने। ये भावना लेकर सभी झगड़ते थे बाबा जी लोग, हमारे आश्रम में इनकी समाधि होगा, वो ना हमारे आश्रम में ऐसे चलता था। तो उसके बीच में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहुंचे, क्यों ये इनके अकेले मात्र शिष्य थे और कोई उन्हें शिष्य किसको नहीं बनाए थे। तो कहे कि आप लोग झगड़ते हो लेकिन प्रकृति में मैं उनके शिष्य हूं, इसलिए मेरा अधिकार है मेरे गुरु के शरीर को लेकर कहीं समाधि देने का। तो बोले तुम, अरे तुम अभी ब्रह्मचारी है तुमको अभी क्या है, तुम बाबा जी भैंस नहीं लिया कुछ नहीं, तुम कहां से बन गया, आज के न्योफाइट डिवोटी है, तेरा अधिकार नहीं है बाबा जी के शरीर को लेकर, चलो तुम। भक्ति सिन्हा सरस्वती ठाकुर कहे कि ठीक है आप लोग बाबा जी लोग हो, परमहंस हो, बाबा जी का अर्थ परमहंस, तो मैं माता गंगा और गौरांग को साक्षी रखकर आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप लोग यदि परमहंस स्थिति में हो तो आप लोग में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि एक साल के अंदर में कोई अवैध स्त्री संघ की चिंतन नहीं किया हो, फिर हमारे गुरु महाराज परमहंस गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शरीर को उठा के ले जाओ अपने आश्रम में। सारे बाबा जी एक दूसरे को देखे, क्योंकि चैलेंज है किसके नाम से, गौरांग महाप्रभु और गंगा के नाम से, देखते रहे कुछ नहीं, सब रखे कोई आया नहीं, भले 6 महीने के अंदर में तुम्हारे मन तुम सब जितने खड़े हो यदि कोई अवैध संघ की चिंतन नहीं किया तो फिर ले जाओ। 3 महीने, 1 महीना, 15 डेज, 7 डेज, 3 डेज, लास्ट नाइट, सब बाबा जी देखते रहे, जो सब जानते हैं सूक्ष्म रूप से चिंतन तो आते रहता है। चले स्वयं फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर ने उठा के अपने गुरु महाराज के शरीर को लेके चले गए। तो इसलिए बड़े चैलेंज की बात है, आम तो इसे बचना बोलते हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल, लेकिन बचना इतने आसान, विशेष रूप में अवैध संघ अवैध स्त्री संघ, ये चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल से सबसे बड़ा कठिन है जीवन में पालन करना है। आज जिसके पास ये प्योरिटी है ये प्रचार में बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। हमारे पास में प्योरिटी नहीं होने से, शुद्धता नहीं होने से प्रचार नहीं कर सकते। हाँ, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी ने कहा प्यूरिटी, शुद्धता है तो आप प्रचार कर पाओगे। प्रभुपाद जी को जो मिला है, जो इनसे थोड़ा सा बातचीत किया है, जो संग किया है, भक्त बन गया है। चुंबक की तरफ लोहा को जैसे आकर्षण करता है, पारस मणि जैसे लोहा को सोना बनाता है। प्रभुपाद जी बड़े ऑरेटर नहीं थे कोई लाखों लोगों को अट्रैक्ट करने का, ये नहीं कि संत ऐसे नहीं होते कि आज लाखों लोगों के बीच में है और काल फिर जेल में है, नहीं। संत की शुद्धता पवित्रता, प्रभुपाद जी के पास में पवित्रता था, इसलिए वो जहां भी गए जो भी इनके साथ थोड़ा मिला बातचीत किया सुना किताब तो भक्त बन जाता था। इसलिए प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य में इसके बारे में विशेष बल दे रहे हैं कि हमें ऐसे ही संस्था को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे यदि हम प्रकृति में रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ठीक से फॉलो पालन नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी कहते कि जो अतः जो इस कृष्ण भावना में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है उन्हें इसे स्मरण रखना चाहिए और विधि विधान को कठोरता से पालन करना चाहिए जिससे उनके मन विचलित न हो और शुद्ध रहें, शुद्ध चेतना में प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र की जप करने के साथ साथ रेगुलेटरी प्रिंसिपल, नहीं तो बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन, बहु जन्म जन्मांतर करने पर। लेकिन यदि हम शुद्धता को बजाय रखना, पहले चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करें। नशा तो नहीं करते हम, नशा करते कोई नहीं, कोई कोई तम्बाकू गुटखा खाता है थोड़ा थोड़ा, नए भक्त का टाइम कोई कोई हैबिट रहा, लेकिन छोड़ना चाहिए सो हैबिट है, तम्बाकू ये सो नहीं खाना। जो आचार्य जी के कहना को नहीं मानोगे आप कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। नशा नहीं करना। कई बार मैं नया भक्त डायरेक्ट रहता था, कभी कभी कंप्लेन आता था, ये छुपकी खाता है क्या, तम्बाकू खाता है, किसको पहले आदत होता ना घर में खई नहीं खाना, तो ये सब छोड़ना चाहिए। नशा नशा नहीं करना है, जितने संभव नशा त्यागना चाहिए। कभी कभी हम ड्रग भी लेते हैं नशा के नाम, यानी कि मेडिसिन के नाम से, जितने संभव इससे भी बचना चाहिए, जानबूझकर नहीं होना चाहिए। तो नशा नहीं करना, दूसरा जुआ सटा नहीं खेलना। जुआ सटा हम खेलते तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी शेयर मार्केट में खेलते हैं, ग्रस्त है तो पैसा चाहिए ना, शेयर मार्केट में खेलना, मनी धन का खेलना, वो भी जुआ है। कभी कभी लाखों रुपया मिल जाता, कभी कभी नहीं मिलता, तो फिर वो ब्रेन हर्मर हो जाता, फिर वो कभी करोड़ों रुपया चले जाता है। तो इसलिए ये नहीं करना, जुआ सटा नहीं खेलना है, और मांसाहार नहीं करना है, मांसाहार तो नहीं करता सब बच्चे, और अवैध संघ से बचना, केवल दैहिक रूप से ही, मानसिक रूप से भी बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि आप थिंकिंग कर रहे थे, थिंकिंग विलिंग एक्टिंग, फिर स्तर में आ जाते, तीनों स्तर रहते हैं। पहले थिंकिंग करते रहेगा, फिर आस्ते आस्ते इसमें सहमति हो जाए, कोई होना चाहिए, सभी एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा हो जाना चाहिए, हर प्रकार की एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो था राम रहीम, बोला कृष्ण तो 16,000 गोपी के साथ, मैंने लाखों गोपी के साथ नृत्य किया, तो मेरे पास भी क्यों 10-20 रहना चाहिए। तो इस प्रकार कभी कभी भावना आ जाती है, फिर उसी हमारा विनाश के कारण बनता है। इसलिए अवैध संघ से भी चिंतन, दैहिक रूप से चिंतन करना, मानसिक स्थिति को पवित्र रखना चाहिए, मन में भी ये चिंतन नहीं आना चाहिए, लाना चाहिए। छोटा हरिदास कथा थाके जनो मन, चेतन चेतन कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं, यदि प्रीति रखी बारे चाह गौरांग रसने, छोटा हरिदास कथा थाके जनो मन। यदि आप गौरांग महाप्रभु के साथ में प्रीति रखना चाहते हो, प्रेम करना चाहते हो, तो छोटा हरिदास की कथा को याद रखो। एकांत में है, वह सन्यासी आश्रम में था, वो क्षेत्र सन्यासी था, एकांत में जाकर कहां मिला, माधवी दासी एक महान भक्तिमती स्त्री थी, पुरी में जो 3.5 भक्त होते थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सिक्की माइती और सिक्की माइती का बहन माधवी दासी, ये राधा कृष्ण की लड़ा में राधा रानी की पर्सनल सर्वेंट थी। तो ऐसा जो ऐसे महान वैष्णव को फिर भी गया था मिलने के लिए, थोड़ा चावल मांगने के लिए गया था, भगवान आचार्य ने भेजे थे, महाप्रभु ने इसको टॉलरेट नहीं किया, सन्यासी होकर एकांत में जाकर स्त्री के पास पहुंचा। विषय क्या है, प्रकृति, प्रभुपाद महाप्रभु ने कभी स्त्री शब्द उच्चारण नहीं करते, कहते प्रकृति कहते थे, प्रकृति पहुंच गया उधर, त्याग दिए, कितने कोई कहने पर भी सुने नहीं, आदर्श निभाने के लिए। ये संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन है, इसलिए हमें इससे बड़े सतर्कता साथ रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी हम कहते कि यदि रेगुलेटरी प्रिंसिपल विधि विधान को पालन नहीं करोगे, संस्था को आप ये मैं जाने पर ये पूरा स्कन को आप नष्ट भ्रष्ट कर दोगे। ये नीति को पालन, विधि है, विधि और निषेध है। विधि क्या है, जिसको जो पॉजिटिव जो काम पालन करते हैं, सुबह मंगल आरती में आना, सोलमाला जपा करना, भागवत कक्षा में बैठना, गुरु पूजा में रहना, आदि ये जो प्रभुपाद ने जो विधान जो दिए हैं, इसको कहते विधि। निषेध है रेगुलेटरी प्रिंसिपल, चार है निषेध, और मणिंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद ने और सब विधियां दी हैं, इसको सब पालन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम शुद्धता को बजाय रखेंगे, तभी प्रचार बहुत आसान से आगे बढ़ेगा। यदि प्रचार आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी मुख्य कारण है हमारे पास में शुद्धता नहीं है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। जब प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुक्स आर दी बेसिस, यदि प्रचारकों को मेरे किताब को पढ़ना चाहिए, बेसिस कहाँ से ज्ञान मिलेगा उसको, प्रभुपाद किताब को पढ़ना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, प्रीचिंग इज द एसेंस। खाली पढ़ते रहा प्रचार नहीं किया तो वो बेकार है। लेकिन प्रचार करेगा कौन, कर सकता है ना, जिसके पास में शुद्धता है। प्यूरिटी इज द फोर्स। और प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का कला भी जानना चाहिए, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। इस चारों व्यवस्था के ऊपर संपूर्ण इस्कन निर्भरशील है। प्रभुपाद ने चारों पिलर बनाए हैं, इसलिए हमें प्रभुपाद सतर्क कराते कि हम किसी ना किसी कारण से यदि भवसागर में गिर गया है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि प्रामाणिक आचार्य जी हों, जिनको हम सदगुरु रूप में स्वीकार किए हैं, जिनको हम वचन दिए हैं, तो उनको उनके निर्देशों को फॉलो कर पालन करना चाहिए। चार विधि जो विधि निषेधों को पालन करना चाहिए। इसी प्रकार स्वयं शुद्ध बने और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं, स्वयं को मुक्त करें। आज जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप स्वयं का जन्म को सब स्वयं भक्त बना नहीं तो दूसरे क्या भक्त बनाओगे, बोले स्वयं भी भक्त बनो। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी किताब केवल दूसरों को बांटने के लिए नहीं, बांटने के लिए तो ठीक है, लेकिन स्वयं को भी पढ़ने के लिए हम किताब भी पढ़ना चाहिए। और किताब नहीं पढ़ोगे दूसरों बोल गया अरे किताब में क्या है महाराज क्या नहीं, आप लेके पढ़ो ना, पता लग जाएगा क्या है, पढ़ो लेके घर में। बस ऐसे प्रचारक नहीं होना चाहिए, प्रचारक को जानना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, गीता में क्या है जानना चाहिए, फिर दूसरे को बताना चाहिए। है कि नहीं राकेश प्रभु, हनुमान प्रभु, थोड़ा इसका प्रति भी ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किताब को पढ़ें फिर दूसरों को भी बताएं बांटें। तो इसी प्रकार प्रभुपा जी हम सलाह देते कि ये संकीर्तन आंदोलन को, ये प्रचार संस्था के इस्कन को प्रभुपा जी करें हम बनाया, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, पूरे विश्व को ये उद्धार कर सकता है, लेकिन ये इस्कन का ही मेंबर लोग यदि ये चार नियम को पालन नहीं करेंगे, विधि निषेध को पालन नहीं करेंगे, ये संस्था को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। हमारे संस्था और अन्य संस्था में यही फर्क है, ये संस्था के प्रत्येक मेंबर प्रभुपाद जी से आशा की जाती है कि सभी को नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये नहीं गंजा पिए मछली खाए और हरिनाम करें, ऐसा नहीं है। इस संस्था में है सभी को कड़ाई चार और रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए और विधि निषेध के साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी भक्ति का शिक्षा देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? जिनको भूख लग गया तो प्रसाद तैयार है, जा सकते, जिनको प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते द कमेंट। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।